ஓம் சாந்தி. சபீ பஹனோ கோ மாதாவோ கோ வந்தே மாத்ரம். பாபா கே இஸ் விசேஷ ஸ்தான் பர் சாரே பாரத் சே சாரோ தரப் சே காஸ் மாதாயே பஹனே ஆகர் கே சாந்திவன் கி சோபா படா ரஹி ஹை. वो समय था शुरू शुरू में किसी भी सेवा केंद्र पर अगर माताएं नहीं होती तो सेवा केंद्र का वातावरण रूखा सूखा रहता था. बाबा के अवतरण के बाद सबसे पहले कौन बाबा के पास समर्पित होने के लिए तैयार हुए मालूम है आपको? याद है, कहानियां याद होंगी ना. यज्ञ की कहानी में शुरू में माताओं का पार्ट ही ज्यादा था, भाई थोड़े थे. सभी जानते हैं उसमें कुमारियां भी थीं और माताएं भी थीं. मम्मा को पहले ट्रस्ट का बाबा ने हेड बनाया 1937 में. 18 जनवरी 1937 उस दिन का बाबा का लिखा हुआ पत्र जो है, कभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा. उस समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नहीं था, नाम नहीं था. कौन सा नाम था याद है आपको? ओम मंडली था. तो बाबा ने पत्र लिखा था, मैं ओम मंडली माता के चरणों में अपना तन मन धन सब समर्पित करता, और बाबा के सिग्नेचर क्या होते थे? ओम लिखते थे, ओम. उस ट्रस्ट के अंदर 5 कुमारियां और 3 माताएं थी, 8 का ट्रस्ट बनाया था. बाबा ने स्वयं को उस ट्रस्ट का प्रेसिडेंट नहीं बनाया, मम्मा को प्रेसिडेंट बनाया था. तो आप सोच सकते हो, जब भगवान ने अवतार लिया, इस धरा पर आए, तो सबसे पहले किस पर नजर पड़ी बाबा की? भगवान शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि लिखा हुआ है इधर, भगवान से प्रीत की रीत निभाने की विधि. जो टॉपिक देते हैं थोड़ा उसको सामने रखना पड़ता है, नहीं तो भगवान तो भक्ति मार्ग का शब्द है ना, ज्ञान मार्ग का शब्द तो भगवान कभी सुना नहीं है आपने. कौन सा शब्द सुनते रहे हैं? बाबा. बस जो बच्चा जन्म लेता है मां के पास, उसके मुख से भी पहला शब्द क्या निकलता है? बाबा. तो इसी तरह से बाबा ने एक नई शुरुआत इस संसार में की। तब तक जितने भी धर्म स्थापक आए थे सब पिताएं थे, और विशेष भारतवर्ष में अनेक मठ पंथ जो भी थे सबके हेड गुरु जी थे, गुरु। लेकिन बाबा ने आकर के नई शुरुआत की, माता गुरु का दर्जा दिया, माताओं को गुरु की गद्दी दे दी। कोई गुरु अपनी गद्दी देता है कभी? सुना है कभी अपने जीते जी किसी को गद्दी पर बिठाए? लेकिन बाबा खुद नहीं गद्दी पे, ऐसा नहीं कि बाबा बैठा रहे और माताओं को नहीं बैठाए। तो सबसे पहले तो माताओं बहनों को इस बात का बड़ा फख्र होना चाहिए, नशा होना चाहिए कि बाबा ने हम माताओं को आकर के इतना ऊंच उठाया, इतना मान दिया है। जिस जमाने में बाबा ने शुरुआत की थी उस जमाने में माताएं घूंघट में रहती थी, घूंघट में बात भी करेंगी तो घूंघट को थोड़ा ऐसे करके करेंगी आधा। तो बाबा ने गुरु बना करके गद्दी पे उनको बिठा दिया। तो गुरु गद्दी पर बैठे तो क्या करेगा, घूंघट रख करके बैठेंगे क्या? तो सबसे पहले बाबा ने माताओं को इस गुलामी से आजाद कर दिया। उस प्रथा को ही खत्म कर दिया। हालांकि अभी भी हमारे सेंटरों पर माताएं आती हैं, राजस्थान की हैं, हरियाणा की हैं, हिमाचल की हैं, कोई और भी इलाके की होंगी, जो अभी तक भी जहां घूंघट की प्रथा चलती है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे वो भी थोड़ा थोड़ा करके घूंघट चला जाता है। फिर तो बाबा का आना माताओं को कितने बंधनों से मुक्त किया, सोचते हैं आप? कितने बंधनों से मुक्त किया? बहुत बंधनों से मुक्त किया। समाज की इतने बंधन हैं समाज के, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मार एकदम जैसे गुलाम बना करके माताओं को रखा हुआ था। तो बाबा ने आकर के अपने नैनों पे बिठा दिया, दिल तख्त नशीन बना दिया और माताओं के सिर पर जिम्मेदारी का ताज रख दिया। कौन सी जिम्मेदारी? बाबा ने जिम्मेदारी वो दी है जो माताएं खुशी से स्वीकार कर लेती हैं, कि फिर से भारत को स्वर्ग बनाना है, फिर से भारत को श्री कृष्णपुरी बनाना है, फिर से भारत को धन धान्य संपन्न बनाना है, फिर से भारत को ऐसा संपन्न बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, स्वस्थ बनाना है कि सारे विश्व के अंदर भारत नंबर वन हो जाए। ऐसी जिम्मेदारी माताओं बहनों को दी हुई है, लेकिन उसके लिए बाबा ने क्या किया, माताओं को सशक्त बनाया, शक्ति बना दिया। सुनते हैं आप कई बार, एक गीत भी बहुत अच्छा बना हुआ था कि बाबा ने आके माता को शक्ति रूपा बना दिया। एक चित्र है, आपने देखा होगा, कल्प वृक्ष के चित्र के साथ में एक माला का चित्र है, देखा है आपने। उस माला के चित्र में बीच में किसको दिखाया हुआ है, मम्मा को दिखाया है, शक्तियों को दिखाया है, थोड़े से पांडव भी पीछे खड़े हैं। तो शिव शक्ति पांडव सेना, बाबा ने आकर के शिव शक्ति पांडव सेना जो बनाई, तो उसका हेड किसको बनाया, किसको बनाया, मातेश्वरी सरस्वती को। सोचने की बात है कि जबकि कोई पहले ट्रेनिंग नहीं दी है, कुछ नहीं किया है, नहीं तो किसी भी सेना का कोई बड़ा कमांडर बनता है, कुछ होता है तो उसको, उसकी तो बहुत ट्रेनिंग होती है, बहुत टाइम लगता है उसको बनने में। और यहां शुरुआत ही उससे होती है। तो बाबा ने मम्मा में क्या देखा ऐसा, तो ये तो सभी जानते हैं कि इस यज्ञ की स्थापना, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना शिव बाबा ने की, परमपिता परमात्मा शिव ने की, निमित्त बीच में ब्रह्मा बाबा को बनाया। तो शिव बाबा ने जो स्थापना की उसमें माताओं बहनों को इस योग्य समझा कि ये जो कार्य शुरू कर रहे हैं, इसकी शुरुआत से लेकर के संपन्न स्थिति तक पहुंचने के लिए माताएं ही इस बात को ठीक से कर पाएंगी। वैसे दुनिया में क्या कहते हैं, दो माताएं भी एक साथ रहना उनके लिए मुश्किल होता है, ऐसे कहते हैं ना, सुना होगा आपने, प्रैक्टिकल भी देखते होंगे, कई आपके सामने भी झंझट झमेले आए होंगे इसी कारण से। लेकिन बाबा ने माताओं की विशेषताओं को उजागर किया, जो तब तक बिल्कुल सुषुप्त स्थिति में थी। माताओं के अंदर क्या क्या विशेषताएं थी, वो बाबा ने उस चीज को उजागर किया, शिव बाबा ने। और उसमें सबसे बड़ी बात जो बाबा ने कही, साकार बाबा के मुख के द्वारा हम सुनते थे, बच्चियां यज्ञ की सेवा के लिए बहुत ईमानदारी से सेवा करती, छोटी बात नहीं है ये, भगवान आपको सर्टिफिकेट देता है कि यज्ञ की सेवा के निमित्त जो माताएं बहने हैं वो बहुत ईमानदारी से सेवा करती है, इसलिए माताओं को चुना। दूसरी बात, भगवान का कार्य है ईश्वर का कार्य है, शिव बाबा का कार्य है, उसको अच्छी तरह से पहचानने की जो दृष्टि चाहिए थी, जिसको कहेंगे दिव्य दृष्टि, वो सबसे ज्यादा उस समय माताओं बहनों को प्राप्त हुई। सबसे ज्यादा ट्रांस में जाने वाली बहनें होती थी, और इसलिए फिर धीरे धीरे जब सेंटरों पर भी दादियां रहने लगी, बड़ी बहनें रहने लगी, तो भोग लगाना है शिव बाबा को, वतन में जाना है, कोई संदेश लाना है, तो संदेश पुत्रियां किसको बनाया, बाबा ने किसको बनाया, बहनों को बनाया। उसमें माताएं भी थीं। जैसे हम बॉम्बे में थे तो हमारे नलनी बहन के माता जी विजया बहन, वो संदेश पुत्री थी। कोलाबा साइड में शीलिंद्रा दादी थी, वो कुमारी थी, और ब्रजिंद्रा दादी माता थी, उनको भी वरदान प्राप्त था। दादी पुष्प शांता माता थी, उनको भी ये वरदान प्राप्त था। आप सोचिए कि संत महात्मय ऋषि मुनि जाकर के कठोर तपस्याएं करते हैं, क्या करते हैं, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हुई, और माताओं बहनों को घर बैठे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। इससे बढ़कर के और माताओं को क्या चाहिए, मैं कहता हूं। क्या मजा आता था जब जन्माष्टमी होगी, उनके द्वारा, संदेश पुत्रियों के द्वारा सत्यों की सीन सीनरी बाबा कैसे दिखाते थे। बहुत बहुत एक रमणीक वातावरण बन जाता था। तो इस हिसाब से देखें तो संगम युग जो है, इस संगम युग को नाम बाबा ने दिया है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस संगम युग पर सारे कल्प में भले कोई भी रहे हो, पर संगम युग पर किसका नाम सबसे ज्यादा है, माताओं का नाम। तो बाबा ने माताओं को क्यों इतना ऊंचा बनाया, इसके पीछे क्या राज क्या है। राज बहुत छोटा सा है कि जीवन में कुछ भी हुआ, कैसी भी प्रॉब्लम्स आई घर के अंदर, लेकिन माता जी भगवान को नहीं भूली। भगवान के मंदिर में जरूर जाना, प्रसाद जरूर चढ़ाना, प्रसाद लेकर के आना, परिवार को खिलाना, उस प्रथा को माता जी ने सदा कायम रखा। आप लोग कभी पता नहीं फिल्म देखते हैं या नहीं, मैं एक बार सेवा के लिए हांगकांग गया था, तो हांगकांग में जहां मैं रुका हुआ था जिस परिवार के अंदर, सिंधी परिवार, तो उस परिवार में बड़े आराम से हम लोग रहते रहे। सवेरे योग करते थे, सेवा के बहुत सारे प्लान्स थे। एक हफ्ता सेवा करके लास्ट में एक दिन हमारी वहां जो बहन थी, प्रभा बहन नाम है उनका, लच्छू दादा और प्रभा बहन, प्रभा बहन ने कहा कि आज आप रिलैक्स करो। तो मैंने कहा मैं तो रिलैक्स ही रहता हूं, सदा आराम से रहता हूं। कहती नहीं, आज आपको एक फिल्म दिखाएंगे। और फिल्म दिखाई, देखी फिल्म हमने, उस फिल्म के अंदर, शॉर्ट में बता रहा हूं, फिल्म के अंदर इतना ही था कि भाई जुआ खेल करके पैसा कमाना चाहता था और माताजी थोड़ा थोड़ा बचा करके पैसा, मंदिर में एक छोटा मंदिर घर में था उसमें थोड़ा सा चढ़ाती थी और वो मंदिर के लिए पैसा जो होता था वो किसी और काम में नहीं आएगा। लेकिन उस भाई ने एक दिन माताजी को कहा, आप मुझे ये पैसे दे दो, मैं इसका 100 गुना करके आपको दे दूंगा। और उसको सट्टे में पैसे बहुत मिल गए। बहुत पैसे मिलते हैं तो क्या होता है, फिर बड़ा बंगला ले लिया, बड़ी गाड़ियां हो गई, बच्चों को पढ़ाने में भी बड़ा अच्छी तरह से अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, वो सब कुछ किया। लेकिन वो भूल गया कि मैंने भगवान के खजाने से कुछ पैसे लेकर के ये सब कुछ किया था, तो वो पैसे वापस नहीं दिए माताजी को। फिर स्टोरी ऐसी है कि फिर बीमार हो गया। बीमार हो गया तो फिर उसको भगवान आकर के सुनाते हैं, देखो ये दवाइयां जो हैं, तो ये दवाइयां तुम्हारे एक एक, जो भगवान के पैसे तुमने एक एक बार चोरी किए हैं या लिए हैं, वापस नहीं किए हैं, उसकी रिजल्ट है। क्योंकि उसके पैसों से जो उसने कमाए थे जुए से, उससे बच्चों को भी संस्कार नहीं मिले और खुद भी बीमार हो गया, क्योंकि लाइफ ऐसी जीने लग गया। और अंत में फिर माता को कहा, भगवान को मेरी तरफ से भोग लगाओ तो मेरी यह बीमारी छूट जाए। तो इस तरह से उसकी बीमारी तो छूटी, भोग लगाया तो बीमारी छूट भी गई, सच्ची बात है ये। लेकिन इस हिसाब से आप सोचिए कितनी डिफिकल्टीज माताओं के सामने आती हैं, लेकिन भगवान के साथ बड़ी प्रीत सदा रखती हैं, कभी भूलती नहीं है। इसलिए बाबा उसका रिटर्न आकर के देता है माताओं। मुझे याद है साकार बाबा के द्वारा बॉम्बे के अंदर शील इंदिरा दादी सुनाती थी बाबा को कि बाबा वो एक गोपिका है, माताओं को शब्द कितने अच्छे यूज करते थे, गोपिका है, बाबा आपको बहुत याद करती है, उसकी तबीयत खराब है, वो आपके पास आ नहीं सकती लेकिन आपको याद करती है। तो बाबा को दिल में आया, बच्ची इतना प्यार से याद करती है तो मैं जरूर उसको जाकर के मिलूं। और बाबा खास उस माताजी को मिलने के लिए गए, उसके घर पे गए, क्योंकि घर वाले सभी ज्ञान में थे। घर पे गए, माताजी को जाकर के मस्तक पे थोड़ा ऐसे हाथ फिराया कि माताजी आप तो बिल्कुल ठीक हो, बच्ची कहते थे, माता तो नहीं बाबा कहते थे, बच्ची आप बिल्कुल ठीक हो, एकदम अच्छे हो, और टोली खिलाई। माताजी की तबीयत तब से ठीक हो गई, वो तो ठीक होना ही था, लेकिन भाव ये है कि बाबा को अपने बच्चों से और खासकर माताओं बहनों से जो बाबा के यज्ञ की रक्षक बनी और यज्ञ को आगे बढ़ाने में जिन्होंने अपना तन मन धन, चाहे छोटी सी रुमाल की गांठ बांध करके उसमें कुछ छुपा करके भी यज्ञ में लगाया, लेकिन उसकी कितनी बाबा को वैल्यू थी। एक माता ने, अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी रियल बात सुना रहा हूं, हमें ज्ञान में आए हुए अभी 8-9 महीना हुआ था। बाबा उस समय बॉम्बे में आए हुए थे, साकार बाबा की बात कह रहा हूं। तो हम कोलाबा से बाबा के पास हैंगिंग गार्डन पर जहां बाबा रहते थे, कोलाबा से जाते थे सवेरे मुरली सुनने के लिए, और बाबा के सामने हम 6-7 लोग बैठते थे, आनंद किशोर दादा, पुष्प शांता दादी, शीलिंद्रा दादी, रतन मोहिनी दादी की माता जी, शील दादी की माता जी, एक रामी बहन शील दादी के साथ थी वो, और मैं जाता था, कोई एक आधे कोई और भी होंगे, 6-7 लोग सामने बैठते थे। और 6:30 बजे पूरे सवेरे का टाइम, 6:30 बजे फोन की घंटी बजती थी और बाबा कुर्सी पर बैठे हुए फोन उठा करके बात शुरू करते थे, और बात क्या थी, मुरली शुरू हो जाती थी। आप सोचिए, किसी की फोन आए और बाबा फोन पर मुरली सुनाए। अगर आप बाबा को फोन करो और आपको बाबा मुरली सुनाए तो क्या नशा चढ़ेगा आपको। तो माता शील इंदिरा दादी की भाभी थी, भाभी फोन करती थी, उसका नाम था कमला भाभी। वो फोन करती थी और बाबा फोन उठा करके प्यार से मुरली शुरू कर देते, मीठे मीठे बच्चे। तो हम तो नोट्स लिखते रहते थे अपनी डायरी में, तो उस समय इतना हमें आइडिया नहीं था कि बाबा किसी का फोन आए और फोन पर सारी मुरली सुनाए। आप सोचो, आधा घंटा के करीब, कभी आधा घंटा से थोड़ा ज्यादा भी हो जाए, इतना टाइम बाबा मुरली सुना रहे हैं उनको। और मुरली जो चलती थी वो एक के लिए नहीं चलती थी, बाबा के सामने जैसे सारी विश्व की आत्माएं हों, सबको, जैसे विश्व को सुना रहे हैं। बाद में पता चला कि कमला भाभी ने ऐसे टाइम पर, जब यज्ञ का बैगरी पार्ट था, माउंट आबू की बात है, और इशुदादी से बाबा ने पूछा, बच्ची भंडारी में कितना है, बोला 8 आना बाकी है बाबा, रोज का रोज रसद खरीदनी होती थी। तो कहा, बाबा सिर्फ 8 आने हैं। कहा, अच्छा बच्ची कोई बात नहीं। 11:30 बजे विश्वरतन दादा पोस्ट लेकर के आते थे, और पोस्ट में उन दिनों में आप सोचिए कितनी सस्ताई के दिन थे, 1,000 रुपया मनी ऑर्डर से आया। तो उस समय एक प्रकार से यूं कहें कि यज्ञ निवासियों की परीक्षा का टाइम था, जिसको कहें कि रात को कुछ खाया पिया है तो नाश्ता करने के लिए बाबा सबको घूमने के लिए ले जाते थे, और जंगल में करौंदे होते थे, करौंदे समझते हो, छोटे छोटे, वो खा करके नाश्ता होता था इनका। तो जब यज्ञ की ऐसी स्थिति थी, ऐसे टाइम पर वो माता जी निमित्त बनी, और वो दिन और आज का दिन आप देखिए, तब से लेकर के यज्ञ की उन्नति 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 होती गई है। उसके बाद कितने सेंटर खुले, धीरे धीरे खुलते गए, और मधुबन में भी मकान बनने शुरू हो गए, भाई बहने आकर के रिफ्रेश होने लगे, और मकान चाहिए और मकान चाहिए थे। तो इस तरह से, क्योंकि शुरू में ही बाबा ने इस चीज का अनुभव करवा दिया था कि ये यज्ञ सर्वशक्तिवान बाप का यज्ञ है, ओम मंडली के अगेंस्ट जो लोग थे हैदराबाद सिंध में, तो वो तो बहुत कोशिश किए थे कि ये यज्ञ ना चले, लेकिन बाबा को इतना निश्चय था कि मेरा कार्य नहीं है, ये साकार का कार्य नहीं है, ये उस सर्वशक्तिमान का निराकार का कार्य है, और ये कभी रुकने वाला नहीं है। और उसके फलस्वरूप देखा गया कि जितना जितना बाबा के सामने माताएं बहनें मधुबन में आने लगी, चाहे कोई गांव से आई, चाहे कोई शहर से आई, चाहे कोई बड़े घर से आई, चाहे कोई छोटे घर से आई, बाबा ने सभी को एक नजर से, कौन सी नजर, बहुत ऊंची नजर से, कि ये मेरे कल्प पहले वाले बच्चे हैं, जो आकर के बाबा के स्नेही भी बनते हैं, सहयोगी भी बनते हैं, आज्ञाकारी भी बनते हैं, क्योंकि बाबा की आज्ञाकारी बनने वालों में अधिकतर माताएं बहनें ही रही हैं, आज दिन तक भी मैं कह रहा हूं। बहुत सहन करती हैं, कोई कोई को मार भी पड़ती है, अच्छा तो नहीं लगता कहना कि भी हमारी बहनों को मार पड़े, लेकिन मुझे पता है मार भी खा लेती हैं, लेकिन बाबा की इज्जत रखती है कि बाबा को जो मैंने वचन दिया है उसका पालन करूंगी। तो आप सोचिए, जब इतना निश्चय से अगर कोई चलते हैं तो बाबा उनकी रक्षा जरूर करता है। और देखा गया यहां आते आते कई भाई बहनें मिलते हैं, अपने पतियों को ले आती हैं माताएं, फिर आके परिचय देती हैं कि ये पहले नहीं चलते थे, लेकिन अब ये बाबा के यज्ञ स्नेही बन गए हैं। पहले माताजी को सेंटर पे छोड़ने जाते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कान में आवाज सुननी शुरू हो जाती है, फिर धीरे धीरे थोड़ा मेडिटेशन में हिस्सा लेना शुरू करते हैं, फिर गुरुवार के दिन भोग लेना शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद रेगुलर स्टूडेंट बन जाते हैं। तो ये बाबा की कमाल है, लेकिन बाबा के साथ साथ मैं कहूंगा हमारी माताओं बहनों की कमाल है कि जिन्होंने इतना दिल से त्याग किया है, तपस्या की है और सहन किया है। सहन शक्ति के स्वरूप कौन है, हमारी माताएं बहनें हैं। तो जितना जितना आपने सहन किया है उसका फल क्या मिलेगा, का फल मिलेगा कि सतयुग में श्री कृष्ण के साथ। आप देखेंगे भाई राज नहीं कर रहे हैं उसके साथ, बहने ही राज कर रही है। कल एक अखबार आई थी मेरे पास, उसमें श्री कृष्ण के कई सारे वो दिखाए हुए थे पिक्चर के गोपियों के साथ, जो कहते हैं हर एक गोपी के साथ कृष्ण राज कर रहा है। अब सोचिए आप, 8 दिखाते हैं तो बाद में समझ में आता है कि नहीं, 8 गद्दी जो चलती है उसमें श्री कृष्ण दी फर्स्ट दी सेकेंड दी थर्ड ऐसे करके 8 होंगे। इसलिए वो इस तरह से दिखाते, क्योंकि भक्तों को तो भावना में अभी ये सोच नहीं चलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है 8 के साथ एक साथ रास करें, साक्षात्कार होता है ऐसे। तो ऐसी ऐसी बातें जब हम देखते हैं तो उसका एक ही है कि भगवान ने खास बच्चों की प्रीत को देखकर उसका रिटर्न दिया है, प्रीत की रीत निभाई है। बच्चे भी निभाते हैं, बाप भी निभाता है। मैं अपनी बात सुना दूं, पहले भी सुनाई हुई है वैसे तो। एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में था और उसी टाइम बाबा बॉम्बे में आए, साकार बाबा। 2-3 साल ही हुए थे अभी मुझे ज्ञान में, बाबा से बहुत प्यार था, आज भी है, ऐसा नहीं कि था तो अभी नहीं है, बहुत प्यार था, बहुत प्यार है, बहुत प्यार रहेगा। लेकिन मैं हॉस्पिटल में और बाबा बॉम्बे में, वो भी बहुत नजदीक थे हॉस्पिटल के, कुछ ज्यादा दूर नहीं थे। तो मुझे आया कि मैं बाबा को फोन करूं। मैंने बाबा को फोन किया कि बाबा आप बॉम्बे में आए हैं, मेरी बहुत दिल है आपसे मिलने की, लेकिन मैं हॉस्पिटल से बाहर नहीं आ सकता हूं, मेरा ऑपरेशन नाक का हुआ था, हड्डी टेढ़ी थी वो ठीक हुई थी। तो मैंने बड़े भोलेपन में बच्चों की तरह मैंने कहा बाबा आप नहीं आ सकते हैं? बाबा ने कहा इंतजार करना, बच्चे को कहेंगे रमेश को तो बता देंगे आपको कब आएंगे। और फिर शाम को फोन आ गया कि अभी बाबा आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। और बाबा हॉस्पिटल में आए, बगीचे में बेंच पर बैठे, गोद में लिया, टोली खिलाई और कुछ टाइम बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना करके, और इस तरह से बाबा ने बच्चों की संभाल की। आप सोचिए, भूल सकते हैं क्या उसको? इसी तरह से दोबारा मेरी बॉम्बे में तबीयत ठीक नहीं थी तो अव्यक्त बाबा ने आकर के सिर पे हाथ फिराया, सभी ने देखा था उस समय, देखा था बॉम्बे में जब बाबा आए थे, आके ऐसे हाथ फिराया और कहा अभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये बाबा का वरदान, और आज आपके सामने बिल्कुल ठीक होके बैठा। तो ये सब बातें जब सोचते हैं तो आज की जो टॉपिक दी हुई है कि भगवान से प्रीत की रीत निभाने की विधि, तो मैं तो कहता हूं हमें विधि आए या ना आए, भगवान कैसे प्रीत की रीत निभाता है उसको ही अगर हम देखें और उसी को फॉलो कर लें तो भी प्रीत की रीत निभा सकते हैं। बाबा से प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका क्या है। सहज तरीका है, बाबा की जो श्रीमत है, श्रीमत को अच्छी तरह से समझना और उस पर चलना। हमारे रोम रोम में बाबा की श्रीमत समाई हुई होनी चाहिए, रोम रोम में। कोई ऐसा क्षण हमारे शरीर में ना रहे कि जो श्रीमत के अनुकूल साथ ना दे, क्योंकि बाबा की श्रीमत शब्द जो है, श्रीमत, श्रीमत है ही मनुष्य को देवता बनाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए। इससे बढ़कर के और कोई मत है नहीं। जितना जितना हम मुरली को गहराई से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो उतना समझ में आता है कि बाबा हम बच्चों के लिए कितना दूर तक सोचते हैं, बहुत दूर तक सोचते हैं। हम बच्चों की जन्मपत्री बाबा के पास है, तो बाबा के पास जन्मपत्री है, तो अगर भगवान बैठ करके आपकी हमारी जन्मपत्री लिखेगा तो क्या लिखेगा, क्या लिखेगा? भगवान खुद जन्मपत्री लिखे तो हम सब की जन्मपत्री सबसे श्रेष्ठ भाग्य की जन्मपत्री लिखता है। माताओं को संगम युग पर शक्ति रूपा बना दिया, और भविष्य में क्या बनेगी? महारानी बनेगी। महारानी बनने के लिए तैयार नहीं है। आपको तो बहुत नशा होना चाहिए बहनों, सत्ययुग से लेकर के किसका नाम पहले आता है? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। पहले श्री राधे, श्री कृष्ण, फिर श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। आज की मुरली अनुसार दो कला कम होती है, तो भी द्वाप ये त्रेता में भी पहले माता जी का नाम है श्री सीता, फिर श्री राम का नाम है। तो आप सोचिए, माताओं का रुतबा इतना बढ़ाने वाले बाप को माताओं से कितना प्यार है, कितना प्यार है, कितना प्यार है। और सारे विश्व को फिर से स्वर्ग बनाना, सारे विश्व को परिवर्तन करना, वो भाइयों का काम नहीं है। भाई सहयोगी हैं, लेकिन माताओं बहनों के द्वारा ही इस विश्व का परिवर्तन होना है। तो उसके लिए, अपने भाग्य के लिए बहुत अपने आप को बधाई देना कि वारे में, वारे में। अभी आप जानती हो, इस वर्ष सेवा के लिए हम लोगों ने जो सेवा के लिए टाइटल सोचा है, जिसके अंतर्गत सारा वर्ष मनाएंगे, उसका नाम दिया है विश्व वैश्विक ज्ञान उदय द्वारा, विश्व ज्ञान उदय द्वारा स्वर्णिम युग। दूसरे दूसरे प्रोग्राम बहुत किए हैं, आखिर भी सतयुग की स्थापना की बात आती है तो वो कभी करेंगे। तो बाबा कहता है अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी से लेकर के वो करनी है। और उसका आधार है ज्ञान उदय, सबके अंदर ज्ञान की जागृति लाने के लिए अभियान चाहिए। सभी जानते हैं हमारे अहमदाबाद के महादेव नगर की चंद्रिका बहन और उनके साथ में युवा वर्ग की बहनें और भाई सभी ने मिलकर के बहुत बड़ा कार्यक्रम बनाया है। एक बड़ी बस बनाई है और उस बस में ज्ञान के चित्र भी हैं, उसके अंदर फिल्म भी दिखाते हैं, ड्रामा भी करके दिखाते हैं। और वो बस भारत के कोने कोने में जाकर के वो प्रोग्राम कर रही है और 3 साल तक वो प्रोग्राम चलने वाले हैं। आपके भी स्थान पर वो बस आने वाली है। तो आप सोचो अगर भारत में इस तरह से जागृति लाई जाएगी, भारत जागृत हो जाएगा तो विश्व का क्या होगा। विश्व में भी तो बाबा के 140 सेवा केंद्र हैं, उनके द्वारा भी तो जागृति होगी। तो सारा विश्व जागृत हो जाए, ज्ञानमय हो जाए तो रावण जी छुट्टी लेके चले जाएंगे। कई बार भाई बहने ड्रामा करते हैं ना, तो माया को दिखाते हैं, रावण को दिखाते हैं, अब मेरा तो कोई मेरी ताकत ही नहीं हो चलती है, मेरा भी जो कुछ पहले मेरा हाल था अच्छा अब बेहाल हो गया है, और बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके छुट्टी लेके चले जाते हैं। तो विजय किसकी हुई, इसीलिए आपकी निशानी है इसी बात की। विजय की निशानी नवरात्रि के दिनों में किसकी पूजा होती है, देवियों की होती है, और उसमें भी खास नौ दुर्गा जिसको कहते हैं। तो दुर्गा पूजा होती है, तो हे दुर्गाओं, सभी बहनों दुर्गा हो आप। बड़ी खुशी की बात है आप दुर्गा भी हो, आप लक्ष्मी भी हो, दोनों हो। लक्ष्मी बनने में तो और मजा है, जरा हाथ अच्छी तरह से बजाओ, क्योंकि जब तक दुर्गा है तब तक थोड़ा पुरुषार्थ भी करना है, थोड़ा ज्ञान उदय भी करना है, सेवा भी करनी है हर तरह से। लेकिन श्री लक्ष्मी बन गए तो फिर क्या करना है, राज करना है और कुछ नहीं करना है, राज करना है और रास करनी है। तो सभी श्री लक्ष्मी बनने वाली बहनों माताओं को बहुत 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 मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। भगवान की प्रीत की रीत निभाने का यही तरीका है कि नारी को शक्ति बना दिया और शक्ति के रूप में उनको दुर्गा बना दिया और फिर उसके बाद उनको श्री लक्ष्मी बना दिया। ये है भगवान के प्यार की रीत। ओम शांति। अभी थोड़ा कितने मिनट बैठेंगे बाबा के याद में, बैठेंगे या थक गए, थके नहीं है ना, सबके चेहरे खिले हुए हैं, हंस रहे हैं, मौज में हैं, तो फिर बहुत खुशी खुशी बाबा के साथ मन लगाना और बाबा को दिल ही दिल से थैंक्स देना कि बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया है और क्या देने वाले हैं। यूं तो कहें कि वो मिला हुआ ही है, देने वाले हैं नहीं, लेकिन हम आपके वारस बन गए हैं, वारस बने हुए हैं और सदा वारिस बनेंगे, कलप कलप के वारिस बनेंगे। तो अभी चलो बाबा के पास सूक्ष्म वतन में। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों के साथ सूक्ष्म वतन में खुशी खुशी नयन मुलाकात करो और फिर बाबा को थैंक्स देते देते अपने भविष्य के भाग्य को भी देखते रहना। ओम शांति।
सतयुग में अब तुम्हें आना।